हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 37 एंड 38, 1.37 एंड 1.38। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापात्तस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं तपश्चातिर्जनार्दन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्र से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? तात्पर्य, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल से दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। ओम अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन संहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। नवीन वर्ष की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम श्री भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इस नवीन वर्ष में भगवान आपको सब कुछ प्रदान करे, भक्ति प्रदान करे, प्रेम प्रदान करे, उनकी कृपा आपको बहुत सारी प्राप्त हो, आपका जीवन सुखमय और आनंदमय हो, और ऐसा प्रतिवर्ष हो। ऐसे श्री भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। इसी प्रार्थना के साथ हम अपेक्षा भी करते हैं कि पिछले साल से इस वर्ष, पिछले वर्ष से इस वर्ष आप और अधिक प्रयासरत रहेंगे, और अधिक कर्तव्य दक्ष रहेंगे और अधिक सेवा में व्यग्र रहेंगे और अधिक कृष्ण कॉन्शियस कृष्ण भावना भावित रहेंगे। सत्र में ही तात्पर्य में अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। लोभो पहुत चेत सह, इस बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस श्लोक में कहा गया है। क्या कहा गया है? लोभो पहुत चेत सह, अर्थात लोभ से अभिभूत हो गए, लोभ से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, अर्थात बहुत ज्यादा लोभी हो गए, लोभ बढ़ गया है। आवाज ठीक आ रहा है? इको है अभी? ठीक है। लोभो बहुत चेत सा, अपवृत्त हो गए। अपवृत्त किस से? अपवृत्त किसने किडनैप कर लिया इनको? लोभ ने किडनैप कर लिया है। किसको? कौरवों को। लोभो बहुत चेत सा, इनकी चेतना को, इनकी समझ को, इनके विवेक को क्या किया है? अपवृत्त किया गया है, किडनैप किया गया है। यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, क्योंकि लोभ हावी हो गया है, प्रचंड लोभ बढ़ गया है, भयंकर लोभी हो गए। पद्म पुराण में एक सुंदर श्लोक आता है, कहता है, परवित्तादिकं दृष्ट्वा ने तुम यह हृदि जायते अभिलाषत युजश्रेष्ठस लोभ परिकीर्तितः। अर्थात परवित्तादिकं दृष्ट्वा, परवित्त, परवित्त अर्थात दूसरे का धन, परवित्तादिकं दृष्ट्वा देख लेते हैं, दूसरे का ऐश्वर्य जो व्यक्ति ने तुम यह हृदि जायते, अर्थात दूसरे का ऐश्वर्य व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। दूसरे व्यक्ति का ऐश्वर्य, दूसरे व्यक्ति के पास संपत्ति है, धन है, ज्ञान है, तो जो व्यक्ति उसको सहन नहीं कर सकता कि अरे इसके पास है मेरे पास नहीं है, कैसे हो गया ये, ऐसे कैसे हो सकता है, इसका छीनो, अपना बढ़ाओ नहीं उसका छीनो, किसी भी प्रकार से दूसरे के पास ना तो ऐश्वर्य होना चाहिए, न शक्ति होनी चाहिए, न ज्ञान होना चाहिए, ऐसा प्रयास होता है ऐसे लोगों का। पद्म पुराण में इसलिए कहा गया है, दूसरे का ऐश्वर्य जो व्यक्ति सहन नहीं करता वह व्यक्ति लोभी है, सहन नहीं होता है दूसरे का ऐश्वर्य। कई बार हम देखते हैं जेलस हो जाते हैं लोग, द्वेष भाव बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है द्वेष भाव? लोभ बढ़ गया है, लोभ के कारण दूसरे के ओर हम प्रेम भाव से नहीं देखते हैं, द्वेष भाव से देखते हैं। हमारे अंतकरण में दूसरों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। उनका कोई दोष नहीं है, दूसरों का कोई दोष नहीं है, फिर भी घृणा होती है। जैसे हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारा कलीग है बहुत अच्छा कर रहा है, तो कभी हमारे मन में उसके प्रति घृणा हो जाती है, क्योंकि वो अच्छा कर रहा है, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, अर्थात दूसरों के प्रगति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो मूल कारण क्या होता है? लोभ होता है। तो परवित्तादिकं दृष्ट्वा नेतुं स हृदि जायते, दूसरे का ऐश्वर्य जो व्यक्ति सहन नहीं करता वह लोभी है। ऐसे लोभ से, इस प्रकार से जब व्यक्ति के पास लोभ बढ़ता है तो उसका ज्ञान और उसका धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। लोभ से व्यक्ति का ज्ञान अर्थात समझ और उसका धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लोभ क्या करता है? बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, बुद्धि पूर्णतः भ्रष्ट हो जाती है। वो एक रोग है, एक डिजीज है, जिसमें ऐसे ही कुछ होता है। कोई बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से होगा तो उनको पता होगा, क्या कहते हैं उसको, अल्जमायर, अल्जमायर, व्हाट यू कॉल, अल्जमायर, अल्जाइमर, अल्जाइमर, क्या होता है उसमें, याददाश्त, ऐसा ही ये रोग है, ग्रीड, लोभ, लोभ इज अल्जाइमर। उससे क्या होता है, बुद्धि काम नहीं करती, ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब ज्ञान नष्ट हो जाता है तो फिर सदाचार, सद्विचार, इसका क्या कोई अर्थ ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं। तो लोभ, यहां अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे कि यद्यपि ये लोगों को लोभ हो गया है, भले ही ये नहीं समझ रहे हैं कि हिंसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं समझ रहे क्योंकि ये लोभी है, परंतु हम तो लोभी नहीं है ना, हमको तो समझना चाहिए ना, हम क्यों करें ऐसा काम, इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं। अर्थात वो लोभी है तो लोभी होने दीजिए, वे दुर्जन है तो दुर्जन होने दीजिए, वे आतताई है तो आतताई होने दीजिए, वो आतंकवादी है तो आतंकवादी होने दीजिए, उनको मार रहे हैं तो उनको मारने दीजिए, वो पाप कर रहे हैं तो उनको पाप करने दीजिए, ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। उससे धर्म नष्ट हो जाएगा, सदाचार नष्ट हो जाएगा, सद्विचार नष्ट हो जाएगा, प्रेम भाव खत्म हो जाएगा, केवल द्वेष ही द्वेष और शत्रुत्व ही संसार में मिलेगा। इसलिए अर्जुन जो हमको बता रहे हैं, अर्जुन केवल एक ही विषय को इस समय समझ रहे हैं। सो लोग उनको कह तो रहे कि ये लोभी है, पर लोभ के परिणाम क्या क्या होते हैं, कोई व्यक्ति लोभी है तो लोभ के परिणाम क्या होते हैं, लोभ कितने प्रकार के होते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को शारीरिक लोभ हो गया, शरीर के प्रति बहुत लोभी हो गया, तो शरीर के प्रति जब लोभी हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, शरीर को ही मेंटेन करने के लिए जो चाहिए वो खाता है, जैसा चाहिए वैसा रहता है। तो तामसिक आहार, तामसिक विहार, इस प्रकार से वो खाता है, जो खाना ही नहीं चाहिए वो खाता है, क्योंकि लोभ के कारण क्या हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और बुद्धि का काम क्या है, बुद्धि का काम है भेद करना, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि भेद करती है क्या सही है क्या गलत है, ऐसा काम बुद्धि का है। अब बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है तो खाने पीने में वो क्या भेद करेगा, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज सुबह हमारे मंदिर में एक सुंदर सेमिनार हुआ, उसमें आचार्य जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, उन्होंने एक भैंस का उदाहरण दिया। भैंस को हम बुद्धू समझते हैं ना, हम क्या समझते हैं, भैंस बुद्धू जानवर है, एकदम बुद्धिहीन है ना। तो बुद्धिहीन जानवर भैंस को आप घास खिलाओ और उस घास में एक अर्क का पत्ता डालो, अर्क समझते हैं ना, अर्क क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, अर्क, अर्क, अर्क यानी जो हनुमान जी को चढ़ाते पत्ता, हो क्या बोलते हैं उसको, आंकड़ा संस्कृत में अर्क बोलते हैं, रुई बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द है। अभी आप समझ गए होंगे कि हनुमान जी को जो चढ़ाते हैं वो तो यदि भैंस के घास में हमने वो अर्क का पत्ता डाल दिया, भैंस तो बुद्धू है ना, भैंस पूरा घास खाएगी लेकिन वो पत्ते को अलग कर देगी, नहीं खाएगी वो पत्ते को हल्के से सेपरेट कर देगी वो, अर्क के पत्ते को नहीं खाएगी। भैंस को इतना जरूर समझ में आता है कि ये पत्ता खाना नहीं चाहिए, यदि ये पत्ता मैंने खा लिया तो ये मेरे शरीर को तहस नहस कर देगा, ये शरीर को डिस्ट्रॉय कर देगा, मेरे शरीर को नष्ट कर देगा, ये भैंस को भी समझता है समझता है कि नहीं, समझता है। और हमको क्या होता है, हमको लोभ, शारीरिक लोभ जब होता है तो हमको ये आहार के प्रति कुछ समझ में नहीं आता है कि ये हमारे लिए अच्छा है कि हमारे लिए बुरा है, हमारे लिए विष है कि हमारे लिए अमृत है। क्यों, अल्जमायर हो गया, अल्जाइमर हो गया, अल्जाइमर हो गया अर्थात बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कौन सा अल्जाइमर हो गया? लोभ। ये अल्जाइमर का इलाज होगा, पर लोभ ये जो अल्जाइमर है इसका इलाज जल्दी नहीं होता है। तो जब शरीर के प्रति व्यक्ति लोभी हो जाता है तो परिणाम क्या होता है? तामसिक आहार का वो सेवन करता है, खाने पीने में कोई बंधन ही नहीं रखता है, जो दिखा जैसे दिखा वैसे वो खा लेता है। ये लक्षण है। ऐसा जब व्यक्ति करता है तो समझना चाहिए कि मुझे शारीरिक लोभ हो गया, ये लक्षण है। व्यक्ति खाने पीने में कोई नियम नहीं रखता है, कैसे भी खाता है, कुछ भी खाता है, तो समझना चाहिए क्या हो गया? शारीरिक लोभ हो गया। अभी इसका परिणाम क्या होगा, इफेक्ट क्या है? ये तो लक्षण है, हम कहीं पे भी खाते रहते तो ये तो लक्षण हो गया। इसका परिणाम क्या है, फल क्या मिलेगा? फल मिलेगा स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, मैड काऊ, ये सब मिलेगा। इसका इलाज ही नहीं है, सीधे हरी बोल। कोई उपचार नहीं है, वो लोभ है, लोभ के कारण वो हुआ है, शारीरिक लोभ। तो शारीरिक लोभ का लक्षण भी हमको पता है, जब हम अपने आप को स्वाध्याय करते हैं, देखते हैं कि अरे लोभ बढ़ गया है, तो हम क्या करना चाहिए, उसको उस शारीरिक लोभ को कम करना चाहिए। हमारा न्यू ईयर रिजोल्यूशन ये होना चाहिए। हाँ, नए साल का रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए? शारीरिक लोभ को कम करे और एकदम निरोगी जीवन जिए, सुदृढ़ शरीर प्राप्त करे, शक्ति हमारे पास रहे। हाँ, और दूसरों को भी सुदृढ़ शरीर प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त करे। हाँ, ये नवीन वर्ष का ये रिजोल्यूशन होना चाहिए कि शरीर निरोगी रहे। ये प्रयास करना चाहिए ना, नए साल में संकल्प करना चाहिए कि इस वर्ष मैं प्रयास करूंगा, शारीरिक समस्याओं को कभी आने नहीं दूंगा, या शारीरिक समस्या होगी तो उसको कम करूंगा, उसके लिए प्रयास करूंगा। बच्चों को शांत कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे प्रकार का लोभ है आर्थिक लोभ। शारीरिक लोभ हो गया, दूसरा क्या है? आर्थिक लोभ। अब आर्थिक लोभ का लक्षण क्या है? आर्थिक लोभ का लक्षण है व्यक्ति इस ऐसे ऐसे मार्ग से अर्थार्जन करता है, धन कमाता है, कि जो बिल्कुल दुराचारी मार्ग है। सदाचार बिल्कुल नहीं है उसके मार्ग में, धर्म बिल्कुल नहीं है। सत्ता वगैरह या किसी भी प्रकार के लूटपाट या चिटिंग करके व्यक्ति जब धन कमाने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? आर्थिक लोभ। लक्षण क्या है आर्थिक लोभ का? लक्षण क्या है? सिम्टम्स, सारे लोभों के सिम्टम्स बता रहा हूं मैं, और मैं नहीं बता रहा हूं, भगवत गीता में बताई है, उसके आधार पर बता रहा हूं। जो आर्थिक लोभ है, व्यक्ति लोभी हो गया धन के प्रति, कैसे समझना चाहिए? जब वो सट्टा खेलने लग जाए, जब वो चिटिंग करने लग जाए, फंसाना दूसरों को इस प्रकार से करने लग जाए, तो समझना चाहिए व्यक्ति आर्थिक लोभ इसका बढ़ गया है, लोभी हो गया है। अच्छा, लक्षण हो गया, इसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा बड़े बड़े घोटाले। घर में, समाज में, कहीं पे भी है ना, मित्र परिवार या कहीं ऑफिस, बड़े बड़े घोटाले होंगे। दैट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रीड। तीसरा लोभ क्या है? व्यापारिक लोभ। व्यापारिक लोभ का लक्षण क्या है? व्यापारिक लोभ का भी लक्षण यही है कि व्यक्ति त्रस्त हो जाता है, फिर मैनिपुलेशन करने लगता है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, मैनिपुलेटिव हो जाता है व्यक्ति। वो क्या है? व्यापारिक लोभ, व्यापार में लोभ। और परिणाम क्या है? जब जब व्यापार में व्यक्ति लोभी हो जाता है तो परिणाम यह हो जाता है कि पूरे संसार में अविश्वास का माहौल उत्पन्न हो जाता है। कोई किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करेगा। करता है आज? किसी का किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है, अविश्वास का परिस्थिति निर्माण हो जाएगी। वो क्या है? व्यापारिक लोभ। सो पहला हो गया शारीरिक लोभ, दूसरा हो गया आर्थिक लोभ, तीसरा हो गया व्यापारिक लोभ, चौथा है सामाजिक लोभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक लोभ में जब व्यक्ति लोभी हो जाता है, अपना नेम एंड फेम, प्रसिद्धि के लिए लोभी हो जाता है, समाज में व्यक्ति सोचता है मेरा नाम हो, नाम नाम तो भगवान का ही पावरफुल है, शक्तिशाली है। दूसरों के नाम में तो कोई रस ही नहीं है। आप किसी का नाम लेते बैठिए, मान लो किसी का नाम विक्की है किसी का होगा तो क्षमा करना, वो आपके लिए नहीं बोल रहे, एक उदाहरण दे रहे हैं। तो आप 1,00,000 बार विक्की विक्की बोलिए, विक्की 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 ऐसा 1,00,000 बार बोलिए, क्या फल मिलेगा? नहीं मिलेगा फल, सर दर्द होने लगेगा प्यास लगेगी, भूख लगेगी और नींद जैसा होने लगेगा, सारा शरीर परेशान हो जाएगा, मन एकदम सेंसिटिव हो जाएगा, सर दर्द होने लगेगा। हमारे नाम में कुछ है ही नहीं, और हम क्या चाहते हैं? हमारा नाम, फिर वो नाम करने के लिए, उस कीर्ति के लिए, फेम के लिए हम क्या करते हैं? हम अशांत रहते हैं, असुरक्षितता का अनुभव करते हैं। यदि मेरा नाम नहीं है तो मैं असुरक्षित अनुभव करता हूं अपने आप को। अरे मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, तो मुझे तो पूछना चाहिए, मेरा तो नाम होना चाहिए, तो लोभ है। अब इस लोभ के कारण क्या है? व्यक्ति नित्य ही अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, असुरक्षित अनुभव करता है स्वयं के प्रति, कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, समाज में मैं सुरक्षित नहीं हूं, क्योंकि फेमस नहीं हूं, नाम नहीं है, और इसलिए अशांत रहता है और असुरक्षित रहता है। यह परिणाम है। तो सामाजिक लोभ से व्यक्ति क्या हो जाता है? अशांत रहता है, असुरक्षित रहता है। और पांचवें प्रकार का लोभ है पारिवारिक लोभ। पारिवारिक लोभ, पारिवारिक लोभ में व्यक्ति अपने ही परिवार का सोचता है, यहां तक भी ठीक है, उसके आगे जब बढ़ता है तो परिवार में केवल अपना ही सोचता है, परिवार में केवल अपना ही सोचता है, दूसरे परिवार के दूसरे सदस्य का नहीं सोचता है, केवल अपना ही सोचता है। इससे क्या होता है? इससे वह लक्षण क्या है इसका? पारिवारिक लोभ का लक्षण क्या है? व्यक्ति दुर्लक्ष करता है, निग्लेक्ट करता है दूसरे फैमिली मेंबर्स को, अपने परिवार के अपने ही सदस्यों को क्या करता है? दुर्लक्ष करता है, निग्लेक्ट करता है। फल क्या मिलेगा? धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फल क्या मिलेगा? आप सब जानते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी में एक डिसऑर्डर आ जाएगी, व्यक्तित्व में एक बहुत बहुत बड़ा दोष उत्पन्न होगा, डाइवोर्स होगा। ये सब क्या कारण है इन सब बातों की? इन सब बातों के कारण जो सेपरेशन और जो अशांति और जो व्यक्तित्व में जो न्यून गंडा आ गया है, लोग फियरफुल हो गए हैं, अशांत हो गए, इनसिक्योर हो गए, ये सब का सम टोटल सभी का कारण क्या है? आप देखिए दुर्योधन में सभी था कि नहीं था, सोचिए इस बात पे। परिवार में कलह, समाज में सबके साथ अत्याचार करता था, आर्थिक पैसा चाहिए, धन चाहिए, बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली राजा महाराजा बनना चाहता था, सभी प्रकार से व्यापार, अर्थात वो व्यापारी नहीं था परंतु उसका जो धर्म था उसके धर्म में भी चीटिंग करता था। तो ये सारे के सारे लोभ दुर्योधन में है कि नहीं है? है। वही लोभ हमारे अंदर कम अधिक मात्रा में है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो अर्जुन हमारे विषय में बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? हमारे विषय में बोल रहे हैं कि ये लोग लोभी है, इनको हम समझ लेंगे इनको मारने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार में आए और वो बोले लोगों को नहीं मारना है हमको। वो तो द्वापर युग में कृष्ण ने बोला था, उस समय वो आवश्यक था। कलयुग में ये दुर्योधन सबके मन में आ गया है, अब कलयुग में दुर्योधन को कैसे मारेंगे? तो श्री भगवान अर्थात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने क्या किया, बोले मुझे लोगों को नहीं मारूंगा, उनके अंदर के दुर्योधन को मारूंगा, उनके विचारों को मारूंगा, उनके उनके अंदर उनकी जो चेतना दूषित हुई उस दोष को मारूंगा, उनकी चेतना को बदल दूंगा। सो वही कृष्ण कलयुग में भी आए हैं और उन्होंने संपूर्ण भगवद गीता को 8 श्लोकों में बता दिया है चैतन्य शिक्षाष्टकम के रूप में। वो यदि हम समझते तो वही कृष्ण के उपदेश है, 700 श्लोक 8 श्लोक में कंसाइज हो गए हैं। संपूर्ण वेद, सारे वेदों का सार भगवद गीता है 700 श्लोक में और संपूर्ण भगवद गीता का सार चैतन्य शिक्षाष्टकम है, ओनली 8 श्लोक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोभी इसलिए हो जाते हैं कि कभी कभी हमको ऐसे लगता है कि हमारे रहते हुए ऐश्वर्य खत्म हो गया, तो हम जीवित रहेंगे, हमारे रहते हुए धन खत्म हो गया हमारे पास का, तो इसके भय के कारण, इसी भय के कारण व्यक्ति लोभी रहते हैं। ये पहले प्रकार का भय है। दूसरे प्रकार का भय क्या है? दूसरे प्रकार का भय बड़ा तीव्र है। दूसरे प्रकार का भय है कि ये ऐश्वर्य रहते हुए हम चले गए तो ये ज्यादा बड़ा भय है। पहला भय क्या है? हम जीवित रहते हुए हमारा धन खत्म हो गया तो क्या करोगे, इसलिए लोभ हो जाता है। दूसरे प्रकार की विचारधारा क्या है? ऐश्वर्य तो रहेगा, धन तो रहेगा, लेकिन हम चले गए तो क्या करेंगे। ये दोनों के कारण लोभ होता है। अर्थात दूसरा जो विचार है वो नित्य रहता है, नित्य रहता है, इसलिए व्यक्ति शारीरिक लोभ में फंसा रहता है। दूसरा जो विचार है ना, उसके कारण व्यक्ति शारीरिक लोभ में जीवन भर फंसा रहता है, जीवन भर शारीरिक लोभ के बाहर नहीं आता है, क्योंकि वो ये समझता है ऐश्वर्य तो रहेगा पर मैं चला गया तो क्या हो, और इसके कारण वो लोभ, शारीरिक लोभ के बाहर कभी आ नहीं पाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर वस्तुओं को जुटाते रहता है, कंफर्ट के लिए, आराम के लिए शरीर को और ज्यादा समय तक, और ज्यादा से ज्यादा जीवन जीने के लिए उपाय ढूंढता है। और उसको उपाय क्या मिलता है? वो उपाय ढूंढता है, उसको उपाय वस्तुओं में दिखता है, सारे वस्तुएं एकत्रित करता है, क्योंकि वस्तुएं एकत्रित करने से शरीर सुख प्राप्त होता है। और शरीर सुख इसलिए चाहिए कि ऐश्वर्य होते हुए, धन होते हुए शरीर चला नहीं, समाप्त नहीं होना चाहिए, इसलिए शरीर सुख चाहिए। शरीर सुख के लिए फिर क्या होता है? वस्तुओं को संग्रहित करते रहता है। वस्तुओं को संग्रहित करने में इतना सुख नहीं मिलता है जितना उसके वियोग में दुख मिलता है। वस्तुओं को एकत्रित करने में इतना सुख नहीं है जितना उसके वियोग में दुख है। उदाहरण देखिए, मोबाइल फोन, एक से एक संग्रहित करते हैं हम, ये नहीं तो रोज नया नया कुछ आता है, नया नया लेते हैं, ये वो संग्रहित करते हैं। मान लो एक दिन मोबाइल बंद पड़ गया है, मान लो किसी ने कहीं गिर गया मोबाइल, जो आपको मोबाइल प्राप्त होने से आनंद हो रहा था उससे कई गुना ज्यादा दुख मोबाइल जाने से हुआ। ऐसी टीवी है, बहुत सारी फैसिलिटीज है, और इस्कॉन का एक सुंदर फार्म है, इस्कॉन फार्म गुजरात में है, नंदगांव बड़ौदा के पास है शायद, नंदगांव, वहां पे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी के मार्गदर्शन में उन्होंने एक फार्म कम्युनिटी बनाई है। वहां पे आपको वेलकम है, यू आर ऑलवेज वेलकम। आप अपने ये मुंबई के जीवन से थोड़े से परेशान हो गए होंगे तो वहां पे आप जाके रह सकते हैं। बहुत सादगी का जीवन है, बहुत सुंदर घर बांधे हुए हैं, शांत वातावरण है, कोई भी घर में लाइट नहीं है, वहां फोन का आप लेके भी गए तो चलता ही नहीं है, वो जाम करके रखा है सब, नो फोन, नो लाइट, नो गैस, चूल्हे पे कुकिंग है, चूल्हे पे कुक करते हैं, नो कॉट वगैरह, खाट खटिया कुछ नहीं, नीचे बिछाते हैं, बढ़िया बिछाने के लिए है पर नीचे बिछाते हैं, कोई धुआं नहीं है, कोई गाड़ियां अंदर तक जाती नहीं है, एक उनके एंट्रेंस पे छोड़ उतरने के पश्चात वहां से चल के या फिर जो नहीं चल सकता उनके लिए बैलगाड़ी ऐसा कुछ व्यवस्था है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। जब वस्तुओं का संयोग ही नहीं हुआ है उनको, वस्तुओं के संयोग से सुख मिलता है परंतु वस्तुओं का उन्हें संयोग ही नहीं किया तो वस्तु जाने का दुख क्या होगा, वियोग का दुख क्या होगा, दुख का ही कोई प्रश्न ही नहीं है। तो हमारे मन में अभी एक कुछ मिनट के लिए प्रश्न आ सकता है, प्रगति किसको कहते हैं, प्रोग्रेस डेवलपमेंट किसको कहते हैं, क्या ऐसे जीवन जीना प्रगतिशील जीवन है? तो क्या मुंबई का जीवन जीना प्रगतिशील जीवन है? तो कौन सा जीवन प्रगतिशील है? ये भी नहीं वो भी नहीं, बैलगाड़ी में बैल है, कोई पोल्यूशन नहीं छोड़ते वो, बल्कि जो गोबर मिलता है वो खेत में काम आता है और अच्छी फसल उगती है, और हमारे मुंबई में हमारे पास कार्स है, क्या छोड़ती है? धुआं छोड़ती है, उससे क्या होता है? रोग रहे पोल्यूशन सब कुछ होता है। तो क्या ये लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए? है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मुंबई का होना चाहिए लाइफस्टाइल, अरे तो क्या होना चाहिए, गांव का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो नहीं, हम तो अभी की बात कर रहे हैं, युग की बात जाने दीजिए, हम पास्ट में जा ही नहीं रहे, हम अभी की बात कर रहे हैं, हम जो आज का उदाहरण दिया वो बड़ौदा के पास का जो उदाहरण है आज की बात है, आज प्रेजेंट में हम समाज दुखी है कि नहीं, देखिए कितने सारे प्रकार के रोग हैं, कितने लोग परेशान हैं, प्रत्येक घर में एक ना एक तो रोगी मिलेगा कम से कम, कोई ना कोई बीमारी से प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी की चपेट में है, फिर प्रगति हुई है क्या? जो बीमारियां 50 साल में होती थी वो अभी 25 साल में होती है, प्रगति हो गई है, ये नहीं, हम ये तो कह ही नहीं सकते कि प्रगति नहीं हुई, बिल्कुल हुई, बहुत अच्छी प्रगति हुई है। आज हम कहीं के कहीं घंटे दो घंटे में पहुंच जाते हैं, आपने विचार किया कल सुबह अमेरिका जाना है, टिकट निकाले, फ्लाइट प्लेन में बैठे आप 12 घंटे में अमेरिका, पूरे विश्व को भी भ्रमण कर सकते 15 घंटे में। तो ये तो प्रगति है, तो समस्या कहां आ रही है? समस्या है कि नहीं है? समस्या है तो है, समस्या है इसलिए है कि वस्तुओं को जुटाने का जो हमारा उद्देश्य है, जो पर्पज है, जो प्रगति हम कर रहे हैं उसका जो उद्देश्य है वो गलत हो रहा है। दैट इज रॉन्ग। हम ये जो प्रगतिशील जीवन जिसको हम बोल रहे हैं उसमें हमारा लोभ आ गया है। कौन सा लोभ आ गया है? शारीरिक लोभ। केवल शरीर का सोचा जा रहा है, केवल शरीर का सोचा जा रहा है। अरे मन का भी नहीं सोचा जाता है। मैं आध्यात्मिक बात तो छोड़ दीजिए, आप कौन से यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स आप कीजिए, कहीं बताया गया कि मानसिकता क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटालिटी, माइंड? माइंड का कहीं कोई एजुकेशन नहीं है। बुद्धि, अहंकार, चेतना, आत्मा, परमा, इस छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए। केवल शरीर के ही स्तर पे, केवल शारीरिक स्तर पे ही प्रगति करना हमारा उद्देश्य हो गया है। हम मानसिकता को, मन को भूल रहे हैं, बुद्धि को भूल रहे हैं, विवेक को भूल रहे हैं, चेतना को भूल रहे हैं, आत्मा को भूल रहे हैं, और इस प्रकार से परमात्मा के साथ संबंध को भूल गए हैं, और इसलिए समस्याएं आ रही है। एक व्यक्तित्व किसको कहते हैं? पहले ही क्लास में हमने चर्चा की थी, व्यक्तित्व किसको कहते हैं, पर्सनालिटी किसको कहते हैं? केवल 60 किलो के मनुष्य को पर्सनालिटी किसको कहते हैं? वो शरीर है, उस शरीर में उसका मन है, उसके साथ साथ बुद्धि है, उसका अपना एक अहंकार है, ईगो है, आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, परिचय, वो एक प्रकार की ईगो है, मैं ये हूं, ईगो है उसकी, कॉन्शियसनेस है, चेतना है। वो कॉन्शियसनेस कहां से आती है? आत्मा से आती है, सोल है। सोल कहां से आता है? सुपर सोल से आता है, परमात्मा है, भगवान है। ये कनेक्शन, ये डिस्कनेक्ट हो गया है सबका सब। प्रगति कर रहे हैं हम, एग्रीड, बिल्कुल सही बात है, परंतु कहां तक कर रहे हैं? शारीरिक स्तर तक ही कर रहे हैं, इसलिए समस्याएं हो रही है। इट्स नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है। 50 माले का बिल्डिंग है, 100 माले का बनाइए, नो प्रॉब्लम। परंतु एक हाथ दिन लिफ्ट बंद हो गया तो पूरा चलने का मेंटालिटी रखिए, एटलीस्ट वो विचार रखिए, सुदृढ़ विचार रखिए। वो नहीं रख पाते हैं, फिर दुख होता है। तो दुख का कारण है हमारे उद्देश्य गलत है। गलत अर्थात अपूर्ण है, गलत भी नहीं है, अपूर्ण है। हम केवल शरीर तक ही हमारे उद्देश्यों को सीमित रखते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते, इसलिए इसको कहा गया है शारीरिक लोभ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस श्लोक में कहा गया है यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, हमने लोभ इस शब्द की चर्चा की। आगे कहते हैं कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम, मित्र द्रोह का पाप लग रहा है। मित्र द्रोह, अपने परिवार को या अपने मित्रों को मारने का द्रोह हम करेंगे और उससे पाप लगेगा। मित्र द्रोह किसको कहते हैं? मित्र द्रोह कहते हैं मित्र की निंदा। मित्र तो है, बड़ा अच्छा मित्र है, परंतु कोई दूसरा मिल गया कि उसकी निंदा शुरू हो जाती है, हैं? उस मित्र के प्रति हम निंदा करने लगते हैं उसकी। मित्र द्रोह, मित्र की निंदा। दूसरा क्या है मित्र द्रोह? दूसरा मित्र द्रोह किसको कहते हैं? मित्र के धन को हड़पने का विचार करना, मित्र 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 करना और उसके धन पे नजर होना, काक दृष्टि, कौवे की जैसी नजर, उसके धन को हड़पना, उसको कहते हैं मित्र द्रोह। तीसरा प्रकार है मित्र के साथ क्रोध करना। क्रोध उसी को कहते हैं जिसके कारण द्वेष भाव नित्य के लिए हो जाता है, द्रोह करना, मित्र द्रोह, मित्र के ऊपर क्रोध करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्वार्थ के लिए मित्र के साथ प्रेम भाव रखना, ये मित्र द्रोह है। स्वार्थ सिद्धि करने के लिए मित्र के साथ प्रेम भाव रखना ये क्या है? द्रोह है, मित्र द्रोह है। सो उस समय देखिए द्वापर युग में या कुछ वर्ष पहले देखिए, इवन कोई व्यक्ति का प्रवृत्ति राक्षसी भी होती थी ना, तब भी वो मित्र भाव रखता था। जैसे कंस, कंस को पता चला कि देवकी का पुत्र उसको मारने वाला है, तो उसने दोनों को कैद में डाल दिया। वसुदेव जी कंस के बहुत अच्छे मित्र थे, संबंधी तो थे ही थे परंतु मित्र बहुत अच्छे थे। जब पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी कंस के पास गए, बोलिए ये आपने बोला, ये लीजिए पहला पुत्र हो गया, आपके आज्ञा से मैं लेके आया। तो कंस बोला आप तो मेरे मित्र हो और मुझे तो पता चला है कि आपका आठवां पुत्र मुझे मारने वाला है, आप मेरे मित्र हो, जाइए आप अपने ये पुत्र को लेके जाइए, मैं नहीं मारूंगा इसको। वो तो उसके पश्चात नारद जी आए और उनको कुछ समझाए और फिर वो, परंतु उस समय कंस ने भी अपने मित्रत्व का धर्म निभाया, उसने कहा कि आप जाइए, है ना। उसी प्रकार से हनुमान जी, देखिए हनुमान जी का जो स्वभाव है, मित्र का स्वभाव, मित्रत्व का भाव, हनुमान जी के उस मित्रत्व के स्वभाव को देखकर भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने ही महल में रख लिया कि इतना स्नेह का भाव, इतना मित्र का भाव, कोई स्वार्थ ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उनको अपने ही महल में रख लिया। और सुग्रीव को भी उन्होंने स्थान दिया, कारण क्या है, मित्र भाव। तो भगवान भी मित्र भाव से प्रभावित होते हैं, इवन भगवान तो होते असुर भी मित्र भाव से प्रभावित रहते हैं। कलयुग में हमारे पास भी मित्र भाव होता है, परंतु मित्र का हम उपयोग किस लिए करते हैं, स्वार्थ सिद्धि के लिए, इसलिए उसको मित्र द्रोह कहा गया है और वो पाप का कारण, वो पाप माना गया है। स्वार्थ के लिए मित्र का उपयोग करना एक प्रकार से मित्र द्रोह है, उसको पाप भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण, देखिए भगवान श्री कृष्ण सर्वोत्तम मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है ना, अर्जुन के साथ बैठे हैं अभी। मित्र ऐसे मित्र है भगवान, हमारे सबके मित्र हैं, ऐसे हमारे मित्र हैं, जब चाहे जो रोल करना पड़े वो रोल वो निभाते हैं। कभी गुरु का रोल करना पड़े तो गुरु बन जाते हैं, हाँ, कभी सेवक का रोल करना पड़े तो वे भी वो सेवक बन जाते हैं, अर्जुन के सेवक बन गए, गुरु बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं मित्रत्व को निभाने के लिए। तो भगवान कृष्ण के साथ मित्रत्व करना चाहिए, वो हमारे जीवन का पर्पज है, वो हमारे जीवन का उद्देश्य है। यदि हम भगवान का उपयोग, भगवान के साथ हमारी जो फ्रेंडशिप है, उस फ्रेंडशिप का उपयोग, उस मित्रत्व का उपयोग भी हमारे स्वार्थ के लिए करेंगे, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, इस प्रकार से भगवान के समक्ष हम आएंगे डुप्लीसिटी के साथ, तो वो क्या होगा, मित्र द्रोह होगा, मित्र द्रोह होगा। वो तो ट्रू फ्रेंड है, रियल फ्रेंड है, सच्चे मित्र है, सब जानते भी है हमारा। भगवान जितना हमारे बारे में जानते हैं, हमारे विषय में जानते हैं, उतना कोई जानता ही नहीं है, इसलिए वे हमारे सबसे बढ़िया मित्र है, सबसे उच्च कोटि के मित्र है। परंतु यदि हम उनके भी सामने अंदर कुछ और बाहर कुछ रहेंगे तो बहुत बड़ा द्रोह हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप होगा। तो भगवान को प्रार्थना हमने नित्य करनी चाहिए, हे भगवान हमारे मित्रत्व का स्वीकार करें, हम आपके उपदेशों का पालन करने का प्रयास अवश्य करेंगे। भगवान को हमारा यश नहीं चाहिए, भगवान को हमारा प्रयास चाहिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भगवत गीता का श्रवण करने का, प्रयास किया कि नहीं किया, बस दैट्स इट। भगवान को प्रयास ही चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन को दुर्योधन के दोष को अर्जुन देख नहीं पा रहे हैं, अर्जुन को दुर्योधन के दोष दिख नहीं रहे हैं, वो देखते ही नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, उनके अंदर लोभ है। अब ये लोभ एक इतना बड़ा दोष है कि वो एक दोष में उन्होंने उनके सारे दोष डालकर कह दिया है कि उनके पास ये दोष है। दुर्योधन के पास एक दोष है, कौन सा दोष है, वो लोभी है। अब बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पे। दूसरों के दोष निकालना बहुत आसान है, वेरी इजी। यदि हमारा बस चले तो हम भगवान कृष्ण, भगवान राम और इधर 33 कोटि देवताओं में क्या क्या दोष है एक मिनट में बता दे, हमको बस परमिशन दे दे, सबके दोष पता है हमको, है कि नहीं, सबके दोष पता है, सबको दोष पता होते हैं सबके, दूसरों के। अर्जुन भी यहां क्या कर रहे हैं, कह रहे कि ये दोषी, ये लोभी है दुर्योधन, दूसरों के अंदर के दोष बहुत आसानी से दिखते हैं परंतु हमारे अंदर का दोष नहीं दिखता है। हमारे अंदर क्या दोष है वो नहीं दिख सकता। वो मराठी में कहावत है जिसका मैं हिंदी में अनुवाद बताता हूं, दूसरों के आंख में यदि इतना सा बाल के जैसा भी कुछ तिनका भी गया ना, बाल छोटा सा, तो दिख जाता है, अरे तुम्हारे आंख में तो ये है। और अपने आंख में मुसल भी रहा ना तो भी नहीं दिखता है। अपने स्वयं के आंख में मुसल है तब भी वो नहीं दिखता है। दूसरे दूसरों के आंख में का मराठी में कहते कुशल, एकदम निग्लिजिबल बात है। ऐसी बात है, अर्जुन को दुर्योधन का दोष दिख रहा है लोग यहां पे। अर्जुन के अंदर का कौन सा दोष है जो अर्जुन को नहीं दिख रहा है इस समय, अभी तक नहीं दिखा। उसको क्या कहते हैं, एक शब्द है बस। कौन बोल रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोह, मोहित हो गए अर्जुन। हम पहले तो दो तीन बार कह चुके हैं, मोह के कारण अर्जुन को स्वयं के अंदर का इस समय मोह नहीं दिख रहा है कि वो मोहित हो चुके हैं, उनको दुर्योधन के अंदर का लोभ दिख रहा है। मान लो उल्टा होता, उनको दुर्योधन के अंदर का लोभ नहीं दिखता और स्वयं कितने मोहित हो गए वो दिखता तो भगवत गीता होती ही नहीं। अर्जुन सीधा उठा के अपने कर्तव्य कर्म करके युद्ध करते, मोहित नहीं होते। परंतु समस्या तो यह है ना, भगवत गीता हुई इसलिए कि हमको हमारे अंदर के दोष नहीं दिखते, दूसरों के अंदर के दोष दिखते, इसलिए भगवान को भगवत गीता बोलनी पड़ी। दूसरों के अंदर भगवान को गीता बोलनी पड़ी। आप सोचिए कितना कैसा स्वभाव है हमारा, इस कारण से गीता हुई। अर्जुन की दृष्टि, अर्जुन को जो मोह हो गया उसके कारण वो अपने कर्तव्य कर्म को नहीं समझ रहे हैं। मोह होने के कारण कर्तव्य कर्म को नहीं समझ रहे। मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोषों की ओर होती है तब तक उसको अपना दोष तो दिखता ही नहीं, उल्टा अभिमान होता है, अहंकार होता है, वो तो लोभी है, मैं तो संत हूं, अहंकार हो जाता है। जब तक हम दूसरों के दोष देखेंगे तब तक हम अपना अहंकार बढ़ाते जाएंगे, यह बात निश्चित है 100%। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं डेली लाइफ में, रोज के जीवन में, देखिए एनालाइज कीजिए ऐसा होता है कि नहीं होता है। देखिए अपना जो परीक्षण है, अपना जो अध्ययन है, अपना सेल्फ एनालिसिस, अपने स्वयं का जो विवरण हमको समझना है कि हम क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, रोज हम क्या करते हैं, रोज हमारे विचारधारा में कौन से दोष आते हैं और कौन सी वीकनेस है और कौन से स्ट्रेंथ है, कौन सी दुर्बलता है और कौन सा बल है। जीवन के रोज के आचरण में, रोज के व्यवहारिक जीवन में कितनी दुर्बलता है और कितना बल है, ये हमको इस प्रकार से ही समझ में आएगा। हमको देखना होगा कि हम दूसरों की ओर कैसे कौन सी दृष्टि से देखते हैं, दोष निकालने की दृष्टि से देखते हैं, हम अपने आप को करेक्ट करते हैं कि दूसरों को करेक्ट करने में अपना समय गंवाते हैं, क्या करते हैं। ज्यादातर हम दूसरों को ही करेक्ट करते हैं। आपके पास मान लो 100 मित्र हो गए तो एक मिनट में आप फ्लैश कीजिए 100 मित्रों की ओर, उनके नाम पट 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 मन में, आपको नाम के साथ क्या दिखता है, अरे वो तो लोभी है, वो तो अहंकारी है, वो तो बदमाश है, वो तो ऐसा है, वो तो स्वार्थी है, वो तो मूर्ख है। ये जो है थोड़ा शाना है परंतु ये तो है अच्छा है लेकिन परंतु किंतु बट इफ सोचिए। तो इसका कारण क्या है, कारण ये कि हम दूसरों के अंदर के दोष ढूंढते रहते हैं और जब तक हम ऐसा कार्य करेंगे तब तक हमारे अंदर का दोष हमको नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं दिखेगा। कोई कितना भी ब्रह्मदेव चतुर्मुख से आपको दिव्य ज्ञान देना शुरू करे, ब्रह्मदेव आ गए यहां पे बैठ गए और चार मुख है ब्रह्मदेव को, चार मुख से वो वेदों का ज्ञान आपको देते रहे और आप वो ज्ञान लेते रहे, परंतु यदि दूसरों के अंदर का दोष देखने की वृत्ति नहीं गई तो वो ज्ञान भी फेल है। ब्रह्मदेव के अंदर की दोष निकालना शुरू करेंगे आप तो इसलिए हमको अपने ओर देखना है, दूसरों को आप दूसरों के दोष हम नहीं देख सकते, देखना भी नहीं चाहिए। कार्य विपत्तो दोषान वर्णयंती बालिशः, अर्थात इमैच्योर व्यक्ति, अर्थात उसको क्या कहते हैं जिसको समझ नहीं है, बालक बुद्धि वाला व्यक्ति दोष दिखाता है जब उसको अपने कर्तव्य में कठिनाई दिखती है, अपने कर्तव्य पार करने में, अपने कर्तव्य को निभाने में जब कठिनाई होती है तब ज्यादातर व्यक्ति क्या करता है, दोष दिखाना शुरू करता है। उसको शास्त्र क्या कहते हैं, कार्य विपत्तो दोषान वर्णयंती बालिशः, बालिश कहता है शास्त्र उसको, बालिश स्वभाव है, बालक बुद्धि है। क्यों, क्योंकि कार्य संपन्न कर नहीं पा रहा है और इसके लिए क्या कर रहा है, दोष दर्शन कर रहा है। तो ये इस बात से हमको ध्यान रखना चाहिए कि दोष दर्शन न करें, दोष दर्शन से हमारा चरित्र बिगड़ जाता है। दोषों का दर्शन नहीं होना चाहिए हमको, भगवान का दर्शन होना चाहिए, दोषों का दर्शन नहीं करना चाहिए। जनार्दन अंतिम शब्द इस श्लोक में कहा है, जनार्दन, जनार्दन अर्थात ऐसे भगवान, वो सारे संपूर्ण जन के सभी जीवों के भगवान है जनार्दन, सभी जीवों का दुख दूर करते हैं, ऐसे भगवान है। परंतु हमको कुछ करना होगा उसके लिए, भगवान तो करते हैं परंतु हम क्या करते हैं। तो हे जनार्दन, हे भगवान, हमको ऐसी मति दे, बुद्धि दे, स्थिति दे, संधि अवसर दे कि हम अपने इन दोषों से, अपने स्वयं के दोषों से मुक्त हो जाए। नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न लेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया है, जप नहीं। वहां बोलिए। हाँ बोलिए माता जी। वो अपने इस विषय से संबंधित नहीं है, परंतु जब भक्त कुछ करते हैं, देवर्षि नारद जी जो कुछ भी करते हैं, या जो भी कुछ उन्होंने किया है उस समय, कंस को बताया, ऐसे बताया, उसका पूर्व नियोजन है। वो भगवान की लीला को पूर्ण कराने में एक पात्र निभा रहे हैं नारद जी। तो भागवत की कथा है, नारद जी ने ऐसे इसलिए नहीं किया कि वो बहुत विलन है। हम लोगों ने नारद जी को बड़ा विलन बना दिया है। हम देखते हैं कई बार टीवी पे या बाहरी चर्चा में, उस जो सीरियल्स वगैरह बनाते हैं उसमें नारद जी को कैसा बताते हैं, वो बोलते ये झगड़ा लगाते हैं, झगड़ा लगाने वाले नारद जी। नारद जी ब्रह्मर्षि है। नारद जी की विशेषता क्या है? नारद जी की विशेषता है वो नित्य भगवान का नाम जप करते हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, नित्य भगवान के नाम का जप करते हैं। तो नारद जी ने यह इसलिए किया कि भगवान की लीला को पूर्ण करना था, और उनके लिए यह जिम्मेदारी थी कि किसी प्रकार से भगवान जल्दी से जल्दी इस धराधाम पे आए और राक्षसों का, विशेषकर कंस का अंत करें, कंस का नाश करें। दूसरी बात, जो पहले छह पुत्र जो जिसने उनको, जिनको उसने मारा है, उनका भी कुछ ऐसा कर्म धर्म संयोग था कि उनको मुक्त होना था और अपने कर्मों को निभा के जल्द से जल्द जाना था, ज्यादा टाइम पास नहीं करना था यहाँ पे, बड़े होना फिर ये, तो उन्होंने तुरंत अपना आके चले गए और अपना कर्म का जो कर्जा है उसको पूर्ण किए, भगवान की लीला को पूर्ण करने में एक तरह से उन्होंने सहयोग किया। और नारद जी ने भी उसी प्रकार से भगवान की लीला को, भगवान के कार्य को जल्द से जल्द संपन्न करने के लिए कंस को इस प्रकार से उपदेश दिया।
प्रभु जी ने ऐसा बताया, जो गंगा जी से उत्तर हुए बैठा उनको सरकार के बोलते हैं कि आठ वसु थे।
हाँ वसु,
तो जो योगी जी के दर्द से उत्पन्न हुई ये क्या थी?
नहीं, अभी भागवतम का विषय शुरू हो रहा है, मैं तो इंटरेस्टेड रहता हूँ कि आज जो भगवत गीता का विषय हुआ उसके ऊपर प्रश्न पूछे। अभी भागवतम हम शुरू करेंगे, जन्म कथा पूर्ण हम बताएंगे कि जो पुत्र, जो आठवां पुत्र भगवान कृष्ण है, वो आठवे ही स्थान पे क्यों आए, पहले स्थान पे कौन आए, फिर बलराम जी क्यों आए, फिर योग माया शक्ति क्यों सातवें स्थान पे आई। अब ये सब जो लीला कथा है ये हम भागवतम में चर्चा करेंगे, ये नहीं तो सभी का ध्यान कथा में चला जाएगा और आज का विषय ही रह जाएगा तो जन्म कौन सा हुआ वो सब, तो कथा का विचार हम कथा विचार में भी, जब कथा का, जब भगवान सातवें ध्यान, जन्म कर्म चमे दिव्यम योमे वेत्ति तत्वता, ये श्लोक जब आएगा ना, जन्म कर्म, भगवान कहेंगे मेरा जन्म दिव्य है, उस कथा में हम जन्म को एकदम विस्तृत तीन चार क्लास में समझाएंगे। परंतु आज हमको समझना ये है कि क्या हमारे पर्सनालिटी में कोई इस प्रकार का दोष आया है, उसको दूर करने में कोई दिक्कत हमको जा रही, तो कौन सी दिक्कत है, उसको कैसे दूर करें, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है?
मुक्ति का रास्ता बताइए, हर आदमी इसमें ग्रस्त है, माया से पैदा हुआ है हर चीज।
बिल्कुल है। पहला रास्ते, जो इसका जो रास्ता है, उस रास्ते में चलने के लिए पहला कदम है हमसे प्रयास, हमारा प्रयास, ये पहला कदम है।
प्रयास
ये सिंसियरली ये पहले प्रयास कीजिए अपने आप को समझने का कि यस, हाँ मेरे अंदर ये दोष है और है, इसको मान लीजिए, इसको मानिए।
तो है प्रभु जी,
नहीं, ये आप तो फिर केवल शरीर के लिए सारा समाज क्यों लगा हुआ है? तो कहने का अर्थ ये है कि ये पता ही नहीं है कि मैं शरीर के प्रति लोभी हूँ। नहीं नहीं, वो तो भगवत गीता की कथा है, भगवत गीता में कहा गया है सब। तो हमारा प्रयास क्या है, आज आपने जो कहा बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आज अभी घर पे जाके मैं क्या करूं। वेरी गुड क्वेश्चन। ये जब कहा है दोष है सब है, अब मैं हम क्या करें बताइए, कुछ उपाय? अभी घर पे जाते निकलते से क्या करें? सत्संग की शुरुआत तो सत्संग के बाद होती है, ये एक घंटे का सत्संग है। रियल सत्संग तो आप मंदिर में बाहर जाने के बाद शुरू होगा। मंदिर के बाहर दीवार के बाहर जाओगे आप तब सही सत्संग 7 दिन रहेगा। ये तो एक ही घंटे का पार्ट टाइम काम है, आगे 7 डेज एक सैटरडे तक सत्संग करना है आपको अपने मन का, जो मन में आज आपने यहां से लिया है, और उसके आधार पर पहली स्टेप क्या लूं मैं, क्या प्रयास करूं कि मेरे अंदर दोष है। दोष सभी के अंदर है, सब जानते हैं, शारीरिक दोष तो है ही है, शारीरिक लोभ तो है ही है, लोभ रूपी। क्या करूं? फर्स्ट स्टेप जो हम कह रहे हैं, पहला कदम जो उस रास्ते पे है वो ये है कि एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। बहुत डिफिकल्ट है स्वीकार करना, वही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। हम स्वीकार नहीं करते कि मेरे अंदर फॉल्ट है। स्वीकार करें, एक बार स्वीकार किया हमने कि हाँ मेरे अंदर ये दोष है, मैं एक्स वाई जेड करता हूं, ए बी सी डी दोष है, एक बार इतना प्रयास करके एक पेपर पे लिखिएगा, ये पहला स्टेप है। नहीं पहले ये तो करें, पहले ये करें, पहले देखिए रास्ते पे हमने क्या कहा, ये रास्ता है, ये प्रयास करना है, ये पहली स्टेप है। आप उस रास्ते पे आए, अब गाड़ी चलेगी, अभी तक तो ट्रैक पे नहीं आए हैं, अब ट्रैक पे आए, मान लो लिख लिया ये दोष है, लिख लिया, अब आप ट्रैक पे आए, अब कितनी स्पीड से गाड़ी चलाना है, अर्थात ये दोषों को कौन से स्पीड से हमको ठीक करना है। क्या हमको बैलगाड़ी की स्पीड चाहिए, क्या हमको डायरेक्ट फ्लाइट की स्पीड चाहिए, कौन से स्पीड से हमको ये दोषों का निवारण करना है, उसकी प्रक्रिया है, उसकी पद्धति है, उसका विचार है, उसके तत्व है। वो तत्व क्या है, मैं यदि आपको आज बता दूं इन शॉर्ट, एक वाक्य में इट्स नॉट अ सोल्यूशन, पर मैं ये बता रहा हूं कि ये एक शब्द है, ये एक शब्द हमारे अंदर के दोषों को दूर कर सकता है। करना बहुत कुछ है, परंतु मैं केवल एक शब्द बता रहा हूं, उस शब्द का आधार लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। वो शब्द क्या है, शरणागति, नम्र भाव। बस एक शब्द है, सारा सोल्यूशन इसमें है। समझ में नहीं आएगा, मैंने उत्तर तो बता दिया, इट इज नॉट दैट इजी, समझ में नहीं आएगा। नम्र स्वभाव, हम्बल नेचर। देखिए ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं होता है, अहंकार के कारण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अहंकार क्यों होता है, शरणागति नहीं है इसलिए, और सारी प्रसाद की जड़ वही है। सबसे बड़ा अहंकार क्या है, सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, मैं शरीर हूं बस, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। ये अज्ञान क्यों आता है, लोभ है। कौन सा लोभ है, शारीरिक लोभ है ना, शरीर के प्रति लोभ है। ये सबको दूर करना है तो सबसे पहले भगवत गीता में आगे आएगा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया प्रणिपात। तद विधि प्रणिपात, प्रणिपात विधिपूर्वक, प्रणिपात अर्थात विधिपूर्वक शरणागत भाव, नम्र भाव, अपने आप को समझने का भाव। ये जब होगा अहंकार धीरे धीरे कम होगा, जब हमारे अंदर के दोष हम समझ जाएंगे, अहंकार को कम करेंगे, स्लोली 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 उस रास्ते पे आएगी। गाड़ी पैसेंजर के स्पीड में क्यों ना हो, लेकिन ट्रैक पे तो आई है, कभी ना कभी दिल्ली पहुंच जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक माला जप हम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।